आप सुन रहे हैं मिर्ची ओरिजिनल्स पर स्टोरी ऑल सिने स्टार सैलोन का एपिसोड नंबर 30। जीतेगा भाई जीतेगा। अब तक की कहानी में आपने सुना कि पिछले 1.5 महीने से शहर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें बाय चांस छुट्टन डायरेक्टर को असिस्ट कर रहा था। उन डायरेक्टर को छुट्टन का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने छुट्टन को अपने साथ मुंबई चलने का ऑफर दे दिया। इधर 1.5 महीने से अपने सैलॉन के बंद होने और एक नए यूनिसेक्स सैलॉन के खुलने के कारण छुट्टन की ग्राहकी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, इसलिए छुट्टन ने सिने स्टार सैलॉन को बंद कर मुंबई जाने के लिए पूरी तरह से अपना मन बना लिया था। लेकिन जब छुट्टन ने भोलू को इमोशनल होता हुआ देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि सिने स्टार सैलॉन उसका सपना था, जिसे वो पिछले कई महीनों से बखूबी जी रहा था। इसलिए छुट्टन फिल्म के डायरेक्टर संजीव बाबू की दी हुई मुंबई की टिकट को फाड़ देता है। अब आगे, जब छुट्टन ने अपने फैसले के बारे में डायरेक्टर संजीव घोष को बताया तो उन्होंने छुट्टन के डिसीजन का पूरी तरह से सम्मान किया और कहा कि वो जब भी कभी मुंबई आना चाहे तो उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। एक कॉन्क्रीट डिसीजन के बाद छुट्टन को आगे की रणनीति साफ समझ आ रही थी। उसे अब अपना पूरा ध्यान अपने सैलॉन में ग्राहकों को वापस लाने पर देना था। छुट्टन ने कस्टमर्स को कई सारे ऑफर्स दिए, अपने सैलॉन को रेनोवेट कराया, कई और मॉडर्न गैजेट्स को लेकर आया। लेकिन सिने स्टार की ग्राहकी में जो बात सबसे ज्यादा काम की थी वो इन सबसे अलग थी। अभी हाल ही में खुला यूनिसेक्स सैलॉन हर सुविधा से युक्त था। वहां ब्यूटी सैलॉन से ट्रेंड वर्कर्स लगे हुए थे जो अपना काम बखूबी करते थे, लेकिन उन्हें कस्टमर से बात करने की कला नहीं आती थी, जो कि हमारे देश के हर बार्बर के लिए सबसे जरूरी है। दरअसल हमारा देश बातूनियों का देश है, बातों से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। इस कला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे देश की ट्रेनों में हमें सबसे ज्यादा मिलता है। लोग उस यूनिसेक्स सैलॉन में जाते, वहां की चमक दमक देखते और वहां की सर्विस लेकर चुपचाप वापस आ जाते। वहीं सिने स्टार में कोई भी आता तो वह गप्पों का पहाड़ बनाकर ही वापस जाता था। जो भी कस्टमर सिने स्टार आता, उनकी छुट्टन और भोलू के साथ दुनिया जहां के सभी विषयों पर बात होती थी। उन बातों का स्तर शहर में डलने वाली नई पाइपलाइन से लेकर ट्रंप बाइडेन की विदेश नीति तक जाता था। इससे न केवल कस्टमर्स का टाइम पास हो जाता था, बल्कि बात करने से सिने स्टार के प्रति उनका अपनत्व भी जाग उठता था। कुल मिलाकर सिने स्टार गप्पियों का अड्डा बन गया था और इस तरह से सिने स्टार ने एक बार फिर पटरी पर दौड़ लगानी शुरू कर दी थी। इस तरह एक दिन छुट्टन जैसे ही अपने सैलॉन में आया, उसे भोलू ने एक पर्चा पकड़ा दिया। छुट्टन ने उस पर्चे को पढ़कर जाना कि वो पर्चा बार्बर यूनियन इलेक्शन का नामांकन पत्र था। भोलू ने बताया कि उसकी गैर हाजिरी में उसके पिता बिहारी लाल ने छुट्टन को इस पर्चे को भरने के लिए कहा था। आम चुनावों की तरह ही बार्बर इलेक्शन भी हर 5 सालों में एक बार किया जाता था, जिसमें जीतने वाला पार्टिसिपेंट अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में बार्बर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता था। इसलिए बिहारी लाल अपने बेटे को इस इलेक्शन में खड़ा करना चाह रहे थे, इसलिए उनका यह आदेश था कि छुट्टन इस नामांकन पत्र को भरकर सबमिट कर दे और इलेक्शन की तैयारी करने लगे, क्योंकि इस बार बार्बर यूनियन के लिए पार्षद साहब के बेटे बिट्टू ने भी पर्चा भरा था। बिट्टू के पिता राजनेता होने के नाते इसे एक मौके के रूप में देख रहे थे। इसके लिए वो अपने बेटे को इलेक्शन में निर्विरोध जिताना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बिट्टू के अगेंस्ट खड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को या तो पैसे देकर या डरा धमका कर उनका नामांकन वापस करवा लिया। बिहारी लाल नहीं चाहते थे कि अभी का आया एक नया, जिसे कैंची चलानी भी नहीं आती, वो बार्बर यूनियन का नेतृत्व करे, और लगभग यही बाकी के शहर के बार्बर्स भी चाहते थे। इसलिए बिहारी लाल ने बिट्टू के जवाब में अपने बेटे छुट्टन को इलेक्शन में खड़ा करवाने का सोचा। छुट्टन अपने पिताजी की हर बात मानता था, इसलिए उसने भी नामांकन पत्र भर दिया। पार्षद साहब ने सभी की तरह छुट्टन को भी खरीदने के इरादे से सिने स्टार में कदम रखा। छुट्टन को उनके इरादे की भनक नहीं थी। इसलिए जैसे ही छुट्टन ने उन्हें अपने सैलॉन में देखा तो उनका बड़े गर्म जोशी से स्वागत किया और भोलू को चाय लाने को कहा। पार्षद साहब ने आते ही कहा,
छुट्टन तुम्हारा ही नाम है ना, सैलॉन तो बढ़िया बनवाया तुमने, लेकिन ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो?
बेवकूफी? मैं कुछ समझा नहीं।
बार बार इलेक्शन में मेरा बेटा खड़ा हुआ है, इसलिए ये लो पैसे और इलेक्शन से अपना नाम वापस कर लो।
पार्षद साहब जिस टोन में छुट्टन से बात कर रहे थे उससे छुट्टन को ये अंदेशा हो गया कि कहीं ना कहीं पार्षद साहब बार बार इलेक्शन के नाम पर अपना उल्लू सीधा करवाना चाहते हैं, इसलिए उसने तुरंत ही नामांकन वापस लेने से मना कर दिया।
तुम बच्चे हो अभी छुट्टन, चुपचाप अपना नामांकन वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
छुट्टन अपने फैसले पर अडिग रहा। छुट्टन के बार बार नामांकन वापस लेने से मना करने पर पार्षद साहब गुस्से से तिल मिलाकर कहने लगे,
ये कंचों का खेल नहीं है, इलेक्शन है। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि अपना नामांकन वापस ले लो। मैं आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारा हूं, एक बार नगर अध्यक्ष भी बन चुका हूं, अगली बार मेरी विधायकी की तैयारी है, क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो?
छुट्टन के मन में एक बार तो आया कि नामांकन वापस ले ले, लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि इस तरह से उनका बेटा अगर इलेक्शन में जीत गया तो कम्युनिटी के वेलफेयर के नाम पर तो कुछ नहीं होगा, इसलिए छुट्टन ने एक बार फिर नामांकन वापस लेने से मना कर दिया। अब तक भोलू चाय ले आया था। जैसे ही उसने चाय पार्षद साहब के आगे की, उन्होंने चाय के गिलास को गुस्से से जमीन पर दे मारा। भोलू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पार्षद साहब के इस एक्ट पर छुट्टन ने मन ही मन सोच लिया कि जरूर ही अब ये इलेक्शन जीतकर इनका सारा गुमान तोड़ना है। इलेक्शन में हफ्ते भर का समय था। इलेक्शन के दिन पूरी कम्युनिटी को एक सभागृह में जमा होना था, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स को स्पीच देनी थी, जिसके बेस पर सभी अपना प्रेसिडेंट चुनने वाले थे। नामांकन केवल दो लोगों के लिए ही हुए थे, एक बिट्टू और एक छुट्टन। बिट्टू और उसके पार्षद पापा इलेक्शन में पैसा और पावर से अपना दमखम दिखाने वाले थे, जबकि छुट्टन और टीम ने अपने क्रिएटिव इलेक्शन कैंपेन के जरिए इलेक्शन को जीतने की ठानी थी। जहां पार्षद साहब अपने बेटे के लिए पैसे देकर वोट खरीद रहे थे, वहीं छुट्टन की टीम जिसमें महक, नौबत चचा और भोलू थे, उन्होंने आपस में अलग अलग काम बांट लिए थे। फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट होने के नाते महक का जिम्मा इलेक्शन के पोस्टर्स को डिजाइन करवाने का था। नौबत चचा उन्हें पूरे सभागृह में लगा रहे थे और भोलू इस इलेक्शन के टाइम पर सिने स्टार का ध्यान रख रहा था। छुट्टन ने इस टाइम अपना पूरा एफर्ट अपनी स्पीच को तैयार करने में लगाया। इलेक्शन के दिन पूरा सभागृह भरा हुआ था। नामांकन के लिए केवल दो ही पार्टिसिपेंट्स थे। दोनों को बारी बारी स्टेज पर अपने भाषण के लिए एक निश्चित टाइम मिलना था, जिसमें दोनों को अपनी दावेदारी पेश करनी थी। इसके बाद सभा में बैठे सभी कम्युनिटी के सदस्यों को पेपर पर अपने पसंदीदा प्रतिभागी के नाम के आगे टिक लगाकर पेपर को बॉक्स में डालना था। गिनती करने के बाद जिसके फेवर में ज्यादा वोट आने थे उसे विजयी घोषित किया जाना था। बिट्टू और पार्षद साहब बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने पैसे के दम पर इतने वोट तो खरीद लिए थे कि उनका जीतना लगभग तय था। स्पीच देने की बारी सबसे पहले बिट्टू की थी, जिसने भाषण में ज्यादा वक्त जाया नहीं किया। उसने कहा, देखिए मेरे पिता खुद एक राजनेता हैं, वो कभी अपना इलेक्शन नहीं आ रहे हैं, मैंने राजनीति उन्हीं से सीखी है, मुझे पता है कि कैसे किसी सिचुएशन में सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने हैं, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। भाषण खत्म होते ही सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब बारी छुट्टन की थी। छुट्टन ने इससे पहले कभी स्पीच नहीं दी थी, इसलिए उसे भाषण देने में डर लग रहा था। हालांकि महक ने छुट्टन की स्पीच के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी थी, लेकिन अभी भी छुट्टन का स्पीच भूलना, फंबल करना जारी था। पिता बिहारी लाल ने छुट्टन से बस अपने मन के विचारों को ही स्टेज पर कहने को जोर दिया, और छुट्टन के लिए यही काम आया। उसने अपने भाषण में कहा, मेरे दादाजी एक बरगद के पेड़ के नीचे हजामत बनाया करते थे, मेरे पिता ने एक टीन टप्पड़ की एक दुकान में अपना हजामत खाना खोला। मैंने बीए की पढ़ाई पूरी की हुई है, चाहता तो शहर में अच्छी नौकरी कर सकता था, लेकिन मैंने अपने पुश्तैनी काम को ही समय के साथ आगे बढ़ाया और शहर में अपना सिने स्टार सैलून खोला। खुद अपना सैलून खोलना मेरा सपना था। अभी कुछ दिन पहले मुझे बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे अपने साथ बंबई जाने को भी कहा, लेकिन मैंने अपने सपने को ही तरजीह दी और इसी शहर में रुककर अपने सपने को जीने का फैसला किया। मैं आप लोगों के बीच रहकर हमारे समुदाय को और उन्नत बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपके आशीर्वाद का प्रार्थी हूं। आशा है आप मुझे ही वोट देंगे। छुट्टन की स्पीच के बाद बारी वोट देने की थी। बिट्टू और उसके पार्षद पापा को अपने पैसे और पावर पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनका यह भरोसा तब चकनाचूर हो गया जब केवल मामूली अंतर से ही वो इलेक्शन हार गए। पार्षद साहब जो कभी चुनाव नहीं हारे थे, उनके बेटे की राजनीति की शुरुआत ही हार से हुई थी। जीत की घोषणा के साथ ही छुट्टन की टीम के सदस्य महक, नौबत चचा, भोलू बैंडबाजी की धुनों पर नाचने लगे। छुट्टन ने पार्षद साहब का गुमान तोड़ दिया था, उनका सर शर्म से झुक गया था। लेकिन अब छुट्टन को अपनी बार बार कम्युनिटी के लिए वेलफेयर का काम करने के साथ अपने वेलफेयर के तौर पर तनु आंटी से महक का हाथ मांगना था। क्या तनु आंटी राजी होंगी महक का हाथ छुट्टन के हाथ में देने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी ऑल सिने स्टार सैलून का अगला एपिसोड।